بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. گزشتہ کل آیت نمبر 55 پر میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گویا اشارہ کر دیا خلافت راشدہ کے لیے، خلافت راشدہ کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں گزشتہ کل بہت ساری حدیث اس پر میں سنا دیا میں نے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ٹائم آیا، میں سمجھاؤں گا کس نے کتنے سال تک خلافت کی. بات پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا اور حج کا ٹائم تھا. غالباً زیادہ تر صحابہ کرام اور ازواج مطہرات جو اس زمانے میں موجود تھی، ابن جریر طبری فرماتے ہیں تاریخ طبری میں، اور ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں قریباً سارا ہی مدینہ حج کے لیے گیا تھا، سوائے 78 صحابہ کرام باقی رہ گئے تھے. اور اس زمانے میں خلیفہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بہت کم لوگ تھے، کچھ مرد کچھ عورتیں تھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت حسن اور بھی صحابہ کرام تھے. اب یہ خارجی لوگ، خوارج لوگوں کو موقع مل گیا کہ بہت کم لوگ ہیں، کوئی اتنے لوگ نہیں ہے جو ہمارا مقابلہ کرے، ہم حضرت عثمان کو شہید کر دیتے ہیں. اب موقع پا کر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جیسے میں نے گزشتہ کل اس پر اشارہ کیا تھا. اس وقت ان کی گھر والی بھی گھر میں تھی، نائلہ گھر میں تھی. وہ جب بچانے کے لیے گئی تو ان پر بھی حملہ کیا، ان کی 3 انگلی کٹ گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کی 3 انگلیاں کٹ گئی، شہید کر دیا ان کو. اور شہید کرنے والوں میں آپ کو بعد میں سناؤں گا، اس میں سے ایک نے کہا سینے پر بیٹھ کر حضرت عثمان کے، یہ خارجی کیسے ہوتے میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں، آج تک موجود ہے اور قیامت تک رہیں گے، اور دجال کا ساتھ دینے والے بھی یہی ہوں گے. بیٹھ کر کہا 9 مرتبہ برچھی اور وہ نائف ماری سینے میں، کہا 3 مرتبہ میں نے اللہ کے لیے ماری ہے اور 6 مرتبہ میں نے اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مارا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی شہید کیا، بولتا جاتا تھا. یہ خارجی لوگ اب شہید تو ہو گئے، ان کا جنازہ ان کی باڈی کو دفن کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے، چونکہ اب امیر المومنین تو شہید ہو گئے، گویا مدینہ منورہ کو ان لوگوں نے کنٹرول کر لیا، بلکہ خود امامت کرنے لگے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں. حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو گے تو اتنی زیادہ نماز روزے عبادت اور صدقات کرتے ہیں کہ تم اپنی نماز اور عبادت روزہ کو ان کے مقابلے میں کم سمجھو گے، اتنے زیادہ یہ عبادت کرتے ہوں گے. तो कहा हम दफन करने नहीं देंगे। तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जौजा मोहतरमा जो हज में नहीं गई थी, उसने बाहर निकल कहा अगर तुम लोगों ने हजरत उस्मान को दफन होने नहीं दिया तो मैं नबी की बीवी बगैर दुपट्टा के बाहर आऊंगी, अल्लाह का अजाब तुम पर आ जाएगा। झसत दे दी। लेकिन जनाजा जाते हुए उनके जो उस जमाने में तो लकड़े के उस पर जनाजा ले जाते थे, जनाजे पर पत्थर फेंके, लकड़ियां भी टूटी और जन्नतुल बकी में दफन होने नहीं दिया बाहर। इसलिए हजरत उस्मान की जो वो कब्र है दूर है, उस जमाने में जन्नतुल बकी छोटा था, अब तो बढ़ा दिया इन्होंने एक्सटेंशन करके बाहर। अब उस जमाने में फोन तो नहीं था, व्हाट्सएप तो नहीं था, मैसेजेस नहीं था, कैसे पता चले। उधर हज में लोग गए हुए हैं, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, बहुत सारे सहाबा हज में गए हुए हैं। इधर इजिप्ट में अम्र इब्नुल आस रजी अल्लाह तआला अन्हा वहां गवर्नर है। शाम में हजरत मुआविया है, दमिश्क में है हजरत अब्दुल रहमान है। आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को पता चला कि 44 माइल्स पर हुकूमत करने वाले हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डबल दामाद, दोहरा दामाद जिनको कहते हैं, एक बेटी की शादी कराई उनके साथ और फिर उनके इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी ने अपनी दूसरी बेटी की शादी कराई। फरमा अगर मेरे पास उसके ज्यादा होती तो मैं 10 बेटियों की शादी तुम्हारे साथ कराता। यके बाद दिगरे इतने करीब थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और महबूब थे, उनके तो फजाइल ही अलग है। उनको शहीद कर दिया गया और कोई बदला लेने वाला नहीं है, क्या हो रहा। इधर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद है। फौरन मुहाजिरीन और अंसार जो भी थे उन्होंने बैत कर ली हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर, वो खलीफा बने। अब उधर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा हज पर कर, हज खत्म हो गया, सहाबे किराम के साथ मदीना की तरफ आ रही, रास्ते में पता चला कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया और खारजियों ने, बागियों ने, बलवाइयों ने मदीने पर कब्जा कर लिया और इमामत मन नमाज पढ़ाते हैं। वहीं से वापस मक्का मुकर्रमा चले गए हजरत आयशा और सहाबे किराम वापस चले गए और वहां बैठकर साहबे किराम ने मशवरा किया हमें क्या करना है, कैसे बदला लेना है, कैसे इनको खत्म करना है। तो मशवरा हुआ कि हम बसरा चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? बसरा, उस जमाने में बसरा चले जाते हैं। वहां साहबे किराम की मजबूत जमात है, उनके साथ मिलकर हम दोबारा मदीने में आकर हम इन बलवाइयों को, इन खारजियों को हम खत्म कर देंगे। अब हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ऊंट पर बैठ गई, सहाबे किराम के साथ काफिला चला मक्का से, इसलिए इसको जंगे जमल कहते हैं, जमल के माना ऊंट। लोग जंग कहते हैं, जो इस्लाम से दूर है उसको जंग कहते हैं, हालांकि जंग नहीं, इसको हम कहेंगे मुशाजराते सहाबा। मुशाजरात शजरत के माना, शजर के माना दरख्त है, दरख्त है। सहाबा किराम वो तो आपस में एक दरख्त की तरह है, दरख्त की टहनियां है और दरख्त की टहनियां जब बहुत हवाएं आती है ना तो एक दूसरे से टकराती है, जब हवा का मौसम हो तो एक ही दरख्त है लेकिन उसकी टहनियां क्या है, टकराती है। और दुश्मनों ने, बलवाइयों ने इन सहाबा किराम को आपस में टकरा दिया और कितने शहीद हुए। इसलिए इसको जंग नहीं कहा जाता, इसको मुशाजराते सहाबा कहा जाता है। पहले जंगे जमल हुई, फिर जंगे सिफीन हुई, फिर जंगे नहरवान हुई, यानी मुशाजराते सहाबा में इस तरीके से बलवाइयों ने इस तरह कहा, ये जंग हुई फैले, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो इधर पहुंच गए बसरा, इधर बलवाइयों खारजियों ने जो मदीना पर कंट्रोल किया था उन लोगों ने हजरत अली के साथ मिल गए और बहुत बड़ी बड़ी बात और फुला और फुला और फुला, वे यू कहना चाहते थे हम शहीद करने वालों में से नहीं है।
हम साफ है, हम तो आपके साथ है,
फुला फुला जैसे आज करते हैं। मैंने कहा वो इतनी इबादत वगैरह करते हैं कि अपने आप को उनकी निशानियां क्या क्या मैं बताता हूं आपको खारजियों की। तो जाकर कहा कि बसरा वाले आपके खिलाफ, हजरत अली आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं आपको खत्म करने की, अब लड़ाई की बात। हालांकि बसरा वाले ये इनके खिलाफ थे, खारजियों के खिलाफ, हजरत अली के खिलाफ नहीं। तो हजरत अली ने कहा तो फिर हमको चलना चाहिए बसरा की तरह। वो सहाबे किराम के ग्रुप के साथ बसरा चले। हजरत काका रजी अल्लाह ताला अन्हु को करीब, उधर से हजरत आयशा अपना ग्रुप लेकर आ रही थी मदीना मुनव्वरा में। जाकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से बैठकर हम मशवरा करेंगे क्या करना है। इधर से हजरत अली अपने सहाबे किराम के साथ निकले, रास्ते में पहुंचे, मिडल ऑफ द वे हजरत काका रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, आप जाकर बात कीजिए हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। हजरत काका पहुंचे आगे रजी अल्लाह ताला अन्हु और जाकर कहा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु से, या अम्मा मा कद्दम, आप क्यों तशरीफ ले जा रही है मदीने की तरफ। का कोई इरादा नहीं सिवाय आपस में इसलाह के, हम मिल करके कुछ काम करना चाहते हैं, और कोई इरादा नहीं लड़ने का। का नहीं, तो इधर तो बलवाइयों ने कहा था वो लोग आपके खिलाफ लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो हजरत काका रजी अल्लाह ताला ने पहुंचे हजरत अली के पास के बेफिक्र रहे, ये लड़ने नहीं आ रहे, ये तो सलाह के लिए आ रहे हैं, सुलह के लिए आ रहे हैं, ट्रीटी के लिए आ रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला फरमा ठीक है, मैं हजरत आयशा से बात करता हूं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे हजरत अली और कहा देखो हम एक दूसरे की सुलह कर लेते हैं, लड़ाई नहीं करेंगे, आप लोग हमारे हाथ पर बैठ कर लो, हम फिर दुश्मनों को खत्म कर देंगे। कहा ठीक है, सुलह हो गई। कहा सो जाओ। ये खुतबा हजरत अली का खड़े होकर सहाबे किराम के अंदर में जो नकल किया उसको इब्ने जरीर ने, तबरी ने भी नकल किया है और इब्ने कसीर ने भी नकल किया है कि सो जाओ, कल सुबह फिर मदीना मुनव्वरा सबके सब चले जाएंगे। सबके सब सो गए, लेकिन इन लोगों को नींद नहीं आ रही थी। कौन? खारजी लोग जो उनके हजरत अली की जमात में शामिल हो गए थे ना। इसलिए कि अगर ये सुलह हो गई और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां पर खलीफा बन गए तो उन्होंने कहा हम क्या है, मेरे हाथ पर बैठ कर लो, हम दुश्मनों को खारजियों को खत्म कर देंगे, तो फिर हमारा क्या होगा, कल तो हमारी जान चली जाएगी, बैठ के मशवरा क्या करना है। तो आधे उधर चले गए हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के खान वो ग्रुप की तरफ, आधे इधर रहे। फरमाया अपनी पीठ को घुमा लो, तुम इधर तीर बरसाओ, तहज्जुद का वक्त है। बाद साहब उठे हैं, बाद सोए हुए हैं तहज्जुद के लिए। कहा एक ग्रुप जो है इधर तीर बरसाओ, यानी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के ग्रुप के ऊपर तीर बरसाओ और एक ग्रुप उधर बरसाओ ताकि इनके दरमियान में टकराव हो जाए और ये बात हो जाए कि दोनों, फिर दोनों ने सुलह को तोड़ दिया और लड़ाई के लिए खड़े हो गए। रात के वक्त में फजर से पहले पहले वो दोनों तरफ से टकराव शुरू हो गया, उधर से भी तीर, इधर से भी तीर। अब पूरा एक दिन लड़ाई चली, एक दिन लड़ाई चली, क्योंकि उनको तो चाहिए था कि किसी तरह लड़ा दे ताकि हमारा नंबर कत्ल होने का ना आए। लड़ाई चली, ये है दुश्मनों ने कैसे लड़ाया दोनों में, कितने एक दिन में 10,000 सहाबा शहीद हुए, 10,000 सहाबा शहीद हुए। उसमें तलहा, जुबैर, जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशराए मुबशरा में से गिनाया, वो भी शहीद हुए। शाम के वक्त हजरत अली परेशान है, क्या हो रहा है, जंग कुछ कम खत्म हो गई, सुलह यानी आपस में लड़ना कुछ कम हुआ। हजरत अली पहुंचे, बात क्या हुई, इस तरीके से लड़ाया, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने भी कुछ नहीं किया, हमने अपनी सुलह को बाकी रखी, किया किसने। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला दोनों ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं और देख रहे हैं हजरत तलहा है, रो रहे हैं, हजरत तलहा शहीद हो गए, जुबैर शहीद हो गए, सबके चेहरे से मिट्टी हटा रहे हैं, साफ कर रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं, जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं, उधर जाकर भी इधर भी। अगर ये कत्ल करने वाले होते साहबा को तो ऐसा ना करते, लेकिन बलवाइयों ने इस तरीके से लड़ाई करवाई खारजियों ने। और उन लोगों ने इसी पर नहीं, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के ऊंट के चारों पैर काट दिए इसी जमल में, जमल जो ऊंट को कहते हैं। अल्लाह, अब साहबा किराम को दफन किया, फुलाई लंबा वाकिया है, दफन किया वगैरह, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत हसन हजरत हुसैन अपने बेटों को कहा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु को सेफ्टी के साथ 12 माइल भी बाकी है, आ मदीना मुनव्वरा ले जाओ, वहां पहुंचा दो, कोई तकलीफ ना हो, फुला फुला फुला। इसके बाद अभी तक इन लोगों ने तो जो आ गए मदीना बैत हो गई, लेकिन मसला बहुत खतरनाक हो गया, 10,000 लोग शहीद हो गए एक दिन के अंदर में। अब इधर पता चला कि वहां शाम के अंदर में हजरत मुआविया है, सिफीन, ये वो जगह है जो दमिश्क के पास है, दमिश्क के बॉर्डर के पास है, समझो कि मदीना मुनव्वरा और दमिश्क के दरमियान में जगह, वहां पर ये जंग हुई जिसको जंग सिफीन कहते हैं। इसका पस मंजर क्या हुआ फिर, इधर मदीना वालों ने तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनु के हाथ पर बैठ हो गए, मुहाजिर भी हो गए जो हज से आए थे, अंसार भी हो गए, सब ने मान लिया। लेकिन शाम वाले, वहां तो हजरत मुआविया थे लीडर, वहां तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अनु को माजूल करने का हुक्म दिया, तो उन्होंने जो हुक्म ले जाने वाला था हजरत अली तो अमीरुल मोमिन बन चुके थे, उनके हुक्म को ही रद्द कर दिया, पहले तो हमें बदला लेना है इन लोग हजरत उस्मान का बदला लेना, ये है शियान है उस्मान, जो हजरत उस्मान वो कौन, हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने खुद गए साहबे किराम के साथ शाम सिफीन के पास मुलाकात की हजरत मुआविया रजी अल्लाह उनके, तुमने हमारे हुक्म को ठुकरा दिया, क्या बात है, फरमाया हम आपको मानने के लिए तैयार हैं, आपके साथ बैठ करने के लिए तैयार हैं, हम आपको ठुकराते नहीं हैं, आप हमारे बड़े हैं, और लेकिन हमारा एक फैसला आपको करना है। वो क्या फैसला है, फरमाया ये अबान बैठे हैं, अबान कौन थे, हजरत उस्मान के बेटे मेरे पास बैठे हैं, हजरत मुआविया कह रहे हैं ये अब्दुल्ला हजरत उस्मान के बेटे मेरे पास बैठे हैं, ये हजरत उस्मान की बीवी मेरे पास बैठी है, और मेरे कजन होते थे हजरत उस्मान, पहले बदला दो इन लोगों से बदला लो जिन्होंने हजरत उस्मान को शहीद किया, अगर आप बदला नहीं ले सकते हैं तो आपके ग्रुप के अंदर में वो घुसे हुए हैं बलवाई खारजी, हमें हवाले कर दो, हम इनकी गर्दन उड़ा देते हैं। ये मौकफ किसका था, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला सिफीन में, इस तरह के हम पहले हम आपको जानते हैं, आप बड़े हैं, हजरत अली रजी अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, आप बहुत फुला फुला फुला, मर्तबे के एतबार से हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां बदला लेना चाहते हैं उन लोगों से जिन्होंने हजरत उस्मान को शहीद किया, पहले बदला ले लेते हैं फिर आपसे बैत हो जाते हैं, मैं अकेला नहीं, अगर मैं बैत हो गया मुआविया तो पूरा शाम आपसे बैत हो जाएगा, लेकिन बदला दिलवा दिया गया। अल्लाह अकबर, जब जंग जमल हुई ना उस वक्त हजरत अली ने फरमाया था अपने हसन हुसैन से, या लैतनी मित्तु कबल हाजा नसीय मनसिया, जब हजरत तलहा को देखा, हजरत जुबैर को देखा, बड़े बड़े साहब शहीद हो गए, ए मेरे बेटे हसन, काश के मैं 20 साल पहले मर गया होता, मैं भूला भोला बसरा हो गया होता, मैं आज ये हालत देख रहा हूं, क्या हो रहा है। अब ये सिफीन में भी यही हालत हुई, उन्होंने सबसे पहले, अब हजरत अली का मौकफ क्या था, नहीं पहले बैठ कर लो, मेरी हुकूमत मजबूत हो जाए ना फिर हम सब मिलकर उन दुश्मनों को कत्ल करेंगे, सब मिलकर, क्योंकि बहुत सारे थे। उसके बाद जंग नहरवान हुई, उसमें सारे खारजी को कत्ल, 4,000 को कत्ल किया गया जो दुश्मन थे। तो ये हजरत अली कह रहे हैं पहले बैठ कर लो, वो कह रहे नहीं पहले तुम बदला दिलवा दो, हम बैठ कर गए। इसी पर सबसे पहले सुलह करने के लिए हजरत अली वापस आ गए, नहीं मान रहे थे वो लोग। तो हजरत अली रजी अल्लाह ने कुछ अरसे के बाद सबसे पहले हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला को भेजा, जाओ सुलह कराओ दो, हजरत माविया के पास जाओ, बात करो तुम। ये हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते यूसुफ हादिल उम्मा, इतने खूबसूरत थे, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खूबसूरती दी थी, अल्लाह के नबी ने इनको क्या कहा था, यूसुफ हादिल उम्मा, ये मेरी उम्मत का यूसुफ है, इनको भेजा था जाओ। उन्होंने जाकर कहा तुम्हें शर्म आती है, हजरत अली तो वो है कि तुम्हारे बाप से पहले इस्लाम लाने वाले हैं, तुम तो उस वक्त मुसलमान भी नहीं थे, और अल्लाह के नबी ने इनको क्या क्या उनका मर्तबा बयान फरमाया है, वो कितने बड़े हैं। फरमाया मर्तबे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कहां इंकार कर रहा हूं हजरत अली के मर्तबे का, मैं तो एक ही बात कह रहा हूं कि बदला दिलवा दे हम फौरन बैत हो जाएंगे। इनकी एक ये जिद थी, इनकी ये थी कि नहीं पहले बैत हो जाओ। इज्तिहाद जिसको कहते हैं बुखारी शरीफ में है, वो कहते हैं हम सही है, ये कहते हैं हम सही है, और बुखारी शरीफ में है जो सही निकला उसको डबल सवाब, जो सही ना निकला उसको सिंगल सवाब। इनका इज्तिहाद था ये, तो बदला दिलवा दो। हजरत उस्मान इतने बड़े खलीफा को शहीद किया और कोई बोलने वाला नहीं, कोई बदला लेने वाला नहीं, और हुकूमत तीसरी चौथी तैयार हो गई, तो बात नहीं मानी, वापस आ गए। जरीर बिन अब्दुल्ला वापस आए हजरत अली के पास, बात कर रहे थे वही, उसमें मालिक उस्तुर नखी वो वहां बैठा हुआ था, ये भी खारजी था जिसने हजरत उस्मान को शहीद किया। उसने कहा या अली इनको क्यों भेजा आपने, जरीर को क्यों भेजा आपने, ये तो लड़ाई करवा रहा है, इनको बात करते नहीं आता। अभी बात कैसे कर रहा है ये ताकि मसला आगे न बढ़े, यानी हमारे कत्ल का मसला ना है, काश के मुझे भेजते, मैं जाता, तू जाता तो क्या करता, मैं माविया को शाउट करता, उनको बंद कर, उनको खत्म कर देता, उनसे लड़ाई करता। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला गुस्से होकर चले गए, फिर किसिया ताइफ से डेढ़ घंटा है, ताइफ से डेढ़ घंटा उनकी कब्र है जरीर बिन अब्दुल्ला की, कभी जाना हो ताइफ, ताइफ से डेढ़ घंटा है, गाड़ी वाला ले जाएगा, वहां इनकी कब्र है, वहां चले गए, वो अपनी जिंदगी वहीं गुजारी, आए ही नहीं वापस, और वहीं उनकी कब्र है। जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु चले गए, लेकिन अब मसला तो हल नहीं हुआ, वो तो चले गए, कैसा क्या करेंगे। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर दोबारा दूसरा डेलीगेशन भेजा, और उसमें अदी इब्न अबी हातिम को भेजा, अबी इब्न हातिम बहुत जलाली थे, गए वहां पर शाम, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला बड़ा गुस्सा किया उनको, तुम कौन हो, तुम्हें पता नहीं हजरत अली कौन है, फुला और फुला, कहा लड़ाई के लिए आए हो या सुलह के लिए आए हो, अगर सुलह के लिए आए तो सीधी बात करो, हमारे बाप का जवाब दो, ये बेटे दोनों बैठे उनके बाप को शहीद किया किस बुरे अंदाज से, इनकी बीवी जिनकी उंगली काट दी यही पर है, मेरा कजन है हजरत उस्मान, पहले बदला दिलवाओ वरना फिर हम बैत नहीं करेंगे, अगर बदला मिल गया हम बैत कर लेंगे पूरा। बात नहीं मानी, वापस ये ग्रुप भी आ गए। उधर से हजरत मुआविया ने अपनी तरफ से एक डेलीगेशन भेजा एक जमात को, लेकिन उधर से आ रहे थे तो हजरत अली के ग्रुप में वो बलवाई वो खारजी अंदर में घुसे हुए थे, आगे जाकर उनको आने ही नहीं दिया मदीना में, वहीं से वापस कर दिया, कत्ल कर देंगे, जाओ वापस, यहां नहीं आना मदीना में, तुम लोग ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, बैत नहीं करते, फुला हो फुला, जाने ही नहीं दिया, बात ही नहीं करने दी। तो फिर हजरत उबैदा सुलेमानी को जो ताबी थे उनको भेजा हजरत अली ने दोबारा और चौथा डेलीगेशन के लिए, किसी तरह सुलह हो जाए, लड़ाई ना हो, मसला हल हो जाए, लेकिन दोनों कह रहे थे वो बैत हो जाए, वो कहते नहीं पहले बैत हो जाओ बाद में हम कत्ल करेंगे, फुला और फुला, उनकी बात भी नहीं मानी। तो फिर उसके बाद हजरत अबू दर्दा और अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अबू मुस्लिम खौलानी को भेजा, उनकी बात भी नहीं मानी हजरत मुआविया ने, अबू दर्दा हजरत अबू उमामा को भेजा, उनकी बात भी नहीं मानी, अल्लाह अकबर। अब दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो गई, दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो गई, कितने आदमी शहीद हुए लड़ाई में पता है तुम्हें, 70,000, 70,000 आदमी शहीद हो गए, उसमें दुश्मन भी थे यानी बलवाई भी थे, उसमें ताबी भी थे, साहबे किराम भी थे, ये है अल्लाह। और उसी में ये शिमिर जिल जौशन जो था, जिसने हजरत हुसैन को शहीद किया था रजी अल्लाह तआला के बेटे, वो भी था उस लड़ाई में, खारजी में वो भी है, यही खारजी है। जब ये जंग खत्म हुई, उन्होंने देखा तीन आदमी मेन है, उनको खत्म कर दे। कौन? हजरत अली। अब हजरत अली जैसे आजकल आप देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, एक ही शक्ल है। हजरत अली मैंने, हजरत मुआविया है, और उधर अमर बिन العاص है। जब ये फजर की नमाज के लिए जाए ना, तीन आदमी को भेज दिया, इनको रास्ते में शहीद कर, एक में कामयाब हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनहु जब नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी में आ रहे थे और कूफा जा रहे थे, अमीर मोमिनीन थे कूफा में जा रहे थे, रास्ते में शहीद कर दिया, रास्ते में शहीद कर दिया। और वो दोनों उसमें से हजरत अमर बिन العاص उस दिन फजर की नमाज में नहीं जा सके, वो तो बच गए। और हजरत मुआविया किसी तरह से बच करके घर भाग गए, दो बच गए, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। यही खारजी है जो ये कहते हैं, ऐसे तो दावा करते सुन्नत का कुरान का, क्या कहा हजरत अली, हजरत मुआविया और जितने साहबा है सब के सब काफिर है, इसलिए कि इन्होंने हाकिम बनाया। इन हुक्म इल्ला लिल्ला, हाकिम तो सिर्फ अल्लाह है, जो कुरान की आयत के खिलाफ करे वो सब काफिर है। अल्लाह अकबर। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, फिकुल अकबर लिखी होती, उसमें लिखा है कि यही वो कौम है जिन्होंने कहा गुनाह कबीरा करने वाला काफिर है। अब कितने काबिर होते हैं, अगर गीबत कर ले तो भी गुनाह कबीरा है, जीना कर ले तो भी गुनाह कबीरा, हम सब काबिर हो जाते उस गुरु के एतबार से। इमाम आजम इमाम फरमाते हैं नहीं, काबिर नहीं होता, वो गुनेगार है, तोबा कर ले। ये फिर उसके बाद इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये वो ग्रुप है जिनके बारे में आपको पहचानना हो आज भी तो उसकी निशानी है, उसको पहचान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन में जब माल तकसीम किया तो एक आदमी आया, जुल खुवाई सारा, जुल खुवाई सारा, वो आया कह रहे या रसूल अल्लाह इंसाफ करो, आप इनको ज्यादा माल दे रहे हैं, इंसाफ करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो तो इसलिए दिया था ताकि वो नए नए मुसलमान थे तो उनके दिल को इस्लाम की तरफ बाकी रखने के लिए दिया था, सौ सौ ऊंट दिए थे एक एक को मक्का वालों को, ए दिल इंसाफ करो। अल्लाह के नबी गुस्से में हो गए, फरमाया अगर मैं नबी इंसाफ नहीं करूंगा तो दुनिया में कौन है इंसाफ करने वाला। फिर अल्लाह के नबी ने कहा तेरे खानदान में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो जाहिर में बड़े नेक होंगे, बड़ी नमाजें बड़ी इबादतें करेंगे, लेकिन इस्लाम उनके सीने से ऐसे निकलेगा जैसा कि तीर डालने वाला तीर डालता है और वो जानवर के अंदर से एक तरफ से दाखिल होकर दूसरी तरफ निकल जाता है, ऐसे इस्लाम निकल जाएगा तुम्हारे अंदर से। यही वो लोग था। तुम्हें पता है अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, फरमाया युक्तलून अल मुस्लिमून, ये खारजी लोग हैं जो मुसलमान को कत्ल करेंगे और बुत परस्तों को यहूदियों को नसारा को काफिरों को छोड़ देंगे। दुनिया में आज यही हो रहा है, इराक में क्या हुआ, समझ में बात आ रही है, शाम में क्या हुआ, दुनिया में क्या हुआ जानते हैं आप लोग, और आज भी हो रहा है। सबसे पहले मस्जिद में शहीद करने वाले यही लोग थे जिन्होंने फजर की नमाज में हजरत उमर को शहीद किया। इसको शहीद किया फजर की नमाज में हजरत उमर को शहीद किया, और आज तक मस्जिद में बम डालने वाले यही लोग हैं, यही है। लोगों को शहीद करने वाले आज तक भी इन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है, ये हलाल समझते हैं, ज्यादा सवाब समझते हैं। अहले सुन्नत वल जमात लाखों की तादाद में इराक में शाम में सब शहीद हो गए। कहा हम दूसरे को क्यों मारे, करीब वालों को मारते पहले, और कितने सुन्नियों को शहीद किया गया
इराक में, शाम में और न मालूम कहां कहां दुनिया में, यही लोग हैं।
नंबर दो उनकी निशानी, वो कभी अपने आप को यानी सबको हकीर समझते हैं इबादत में, अपने आप को बड़ा समझते हैं, हमसे ज्यादा इबादत करने वाला कोई नहीं है, हमसे ज्यादा इबादत करने वाला कोई नहीं है। और साथ में सबसे ज्यादा मुसलमानों के पर हसद करने वाले कौन है, यही खारजी लोग है। सबसे ज्यादा जेलस मुसलमानों के साथ यही लोग है। जैसे मैंने आपको समझाया कितना जेलस था हजरत उस्मान के सीने पर बैठकर कहा अपने दिल को ठंडा कर रहा हूं, 6 मरतबा मार कर कहा और 3 मरतबा कहा मैं अल्लाह के लिए शहीद कर रहा हूं। ये लोग समझते हैं अहले सुन्नत को मार दें तो हमें काफिर को मारने से ज्यादा सवाब मिलता है, तुम्हें पता है यही लोग हैं और उन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है। मोहम्मद इब्ने सीरीन का नाम सुना होगा आपने, मोहम्मद इब्ने सीरीन जो ताबीर रुया, और उन्होंने ताबीर रुया ड्रीम पर किताब लिखी है। एक यहूदी ने और एक खारजी ने उनको पकड़ लिया, अकेले थे कहीं जा रहे, पकड़ लिया तो यहूदी ने कहा इसको कत्ल कर दे, तो उस खारजी ने कहा नहीं कत्ल नहीं करना है, इसको टरपा टरपा कर मारेंगे। ये सुन्नत वल जमात है, किस तरह इसकी चमड़ी निकाल निकाल कर परेशान करेंगे, इसके बदन की चमड़ी निकाल 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 परेशान 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 करके मारेंगे। यहूदी को देखा, यहूदी से देखा नहीं गया, उसने परचम मार दिया, कहा नहीं इस तरह नहीं मारना है, इसको इसी तरह मारना है चमड़ी निकाल। मोहम्मद इब्ने सीरीन को इस तरीके से शहीद किया गया, खारजी लोग अहले सुन्नत वल जमात को इस तरीके से शहीद करते हैं। अल्लाह अकबर। और साथ में एक खारजी आया जब जनाजा जा रहा था हजरत उस्मान का जनाजा, उसने क्या कहा मैं जा रहा हूं, मुझे मौका मिल गया अकेले में तो मैं हजरत उस्मान को, शहीद हो चुके हैं दफन की तैयारी, मैं जाकर टमाचा मारूंगा। और आकर उसने हजरत उस्मान की बॉडी को चेहरे पर तमाचा मारा, तब से क्योंकि उसने ये दुआ कर रहा था, ऐसे दुआ कर रहा था, दुआ कर रहा था, क्या दुआ कर, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे मालूम है तू मुझे माफ करने वाला नहीं है, अल्लाह मुझे माफ कर, मुझे मालूम है तू मुझे माफ करने वाला नहीं है, इस तरीके से वो दुआ कर रहा था, समझ में आ रही बात। तो पूछा भाई क्यों इस तरह दुआ कर रहा है, का यही हाथ है मेरा शल हो गया है, शल के माना लकवा हो गया है, कि जिस पर मैंने नियत करके गया था कि मौका मिले तो मैं उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को क्या करूंगा थप्पड़ मारूंगा, मैंने थप्पड़ मारी अल्लाह पाक ने मेरे हाथ को क्या कर दिया शल कर दिया, तब से मेरा हाथ काम नहीं करता, इतनी खतरनाक थे, मरने के बाद भी इतने हसद करने वाले, इतना गुस्सा निकालने वाले, अंदाजा करो तुम लोग। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अनु को जब शहीद किया तो उनका, चूंकि शहीद करते हैं तो वो कुरान पढ़ रहे थे ना, ऐसा तो सर किधर गिरा, ऐसे इंतकाल कर गए तो सर किधर गया। ये खारजी एक आया और उसने तो कुरान पर सर रखा है, पैर से जोर से सर में लात मारी, न कुरान की रियायत की ना तीसरे खलीफा की रियायत की, और फेंक दिया लात मार। हजरत उस्मान, मैं और आप बात कर रहे हैं लेकिन मेरे नबी के कितने चहीते थे हम जान नहीं सकते, हजरत उस्मान के बारे में कैसे शहीद किया उनको, कैसे शहीद किया, हम लोगों को पता नहीं, ये सब सीखना चाहिए, ये तो मेरी तफसीर का एक हिस्सा बन जाए, इसलिए मैं तुम्हारे सामने ये बात बयान कर रहा हूं। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि उनके दिल में मुसलमान के साथ बड़ी दुश्मनी है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। हाँ। अल्लाह अकबर। अल्लामा नाबुलसी का यह हाल था, अल्लामा नाबुलसी को भी इस तरीके से चमड़ी निकाल निकाल कर उनको खत्म किया गया। खैर, और एक निशानी है मालूम करने के लिए, ये उलमा को काफिर कहते हैं, इमाम अबू हनीफा को काफिर कहा, इमाम शाफी को काफिर कहा, मालिक को काफिर कहा, इमाम अहमद बिन हम्बल को, बाद के जितने मुहद्दिन सब को काफिर 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 कह रहे हैं, उलमा को भी काफिर कह रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया हुमुल बशर वल खल्क व खलीका, बदतरीन लोग हैं ये लोग। اللہ کے نبی نے کہا یہ خارجی ہے، بدترین لوگ ہیں، ان کی عقل چھوٹی، یہ چھوکرے ہوں گے، نوجوان ہوں گے، یہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ ہر ایک کو کفر کا فتویٰ دیں گے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے۔ یہ لوگ ہیں آج تک دنیا میں، اور میرے نبی نے فرمایا کہ یہی لوگ باقی رہیں گے قیامت تک، اور یہ ایسا فتنہ کریں گے کبھی مسجد میں، کبھی مدرسے میں، کبھی ہاسپٹل میں، کبھی وہاں، اہل سنت والجماعت کو کیا کریں گے، یہ شہید کریں گے۔ یہی لوگ ہیں جہاں کہیں ہو رہا ہے، یہی لوگ ہیں، ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، اور یہ دجال کے ساتھ مل جائیں گے اور مل کر کے اہل سنت والجماعت کو قتل کرنے کی فکر کریں گے۔ خیر بہت لمبی تفسیر میں نہیں جاتا، پھر اس کے بعد جنگ نہروان ہوتی ہے، اور جنگ نہروان میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ 4000 خارجیوں کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کر دیا، ختم کر دیا، ان کو جلا دیا، ان کو ختم کر دیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن ابن عربی احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کیا ہوئے، بیعت ہوئے، وہ آپس میں صلح ہو گئی، اس کے بعد حضرت علی چوتھے نمبر پر خلیفہ ہوئے، ان کو شہید کر دیا۔ ابن ملجم نے فجر کی نماز میں شہید کیا تو ان کے بیٹے حضرت حسن 6 مہینے کے لیے کیا ہو گئے، پھر خلیفہ بن گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ ان الخلافت، خلافت باقی رہے گی میرے بعد 30 سال تک۔ کتنے سال تک باقی رہے گی؟ 30 سال تک۔ حضرت ابوبکر صدیق 2.5 سال تک، اور حضرت عمر 10 سال تک، حضرت عثمان 12 سال تک، اور حضرت علی 4.5 سال تک، اور 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس طرح ملا کر 30 سال کی اللہ کے نبی نے بشارت دی تھی، وہ 30 سال پورے ہوتے ہیں 30 سال کے بعد۔ 30 سال میں تو اسلام کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اب جب بلوائیوں کو ختم کیا حضرت معاویہ نے، حضرت معاویہ، اس آیت میں 4 خلیفہ کا ذکر ہے، حضرت معاویہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس لیے خلافت راشدہ کا ذکر ہے اس میں، وہی 30 سال والا جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا۔ حضرت معاویہ تو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہاں پر وہ صحابہ مراد ہے کون، زید بن ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، اور حضرت حسن 6 مہینے۔ اس کے بعد ہینڈ اوور کر دیا، حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیٹھ کر لی 20 سال 30 کے بعد۔ دوسرے تو 10 سال حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال مدینہ منورہ میں، 10 سال رہے، اس کے بعد 30 سال چاروں خلیفہ کی حکومت رہی، خلافت رہی، اس کے بعد 6 مہینے ملا کر حضرت حسن کے، 20 سال حضرت معاویہ کی حکومت رہی۔ کتنے سال بھائی؟ 20 سال تک حکومت رہی۔ اس 20 سال میں کچھ لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہوا، جو کچھ ہوا وہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ رسی ٹوٹ گئی، فلاں ہو گیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا تھا۔ 20 سال کے بعد یزید، حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کیا، اس نے 5 سال، کتنے سال کیا؟ 5 سال ختم کر دیا۔ اس کے بعد یہ گویا 65 سے لے کر 130 ایئرس تک، 1 سینچری سے اوپر دوسرے 30 سال تک بنو امیہ کی حکومت رہی، بنو امیہ کی، اور 130 سے لے کر 650 ایئرس تک، 650 سال تک بنو عباس کی حکومت رہی۔ ایسی حکومت تھی کہ وہ کہتے تھے ہماری حکومت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہاں تک کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے۔ لیکن 650 سال کے بعد ان کی حکومت ختم ہوئی۔ پھر اس کے بعد دنیا کے اندر میں الگ الگ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کیا اور کیا، پھر ہندوستان میں یہ مغلیہ حکومت آئی، اور پھر نواب لوگ آئے، اور وہاں پر بھی بڑے بڑے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، اور عمر بن عبد العزیز ہے، اور ترکی کے اندر میں شیخ سلیم ہے، یہ سب کے سب بڑے بڑے بادشاہ بنے ان کے زمانے میں، اور انہوں نے بھی بہت دین کا کام کیا۔ خیر اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے، وعد اللہ، لیکن شرط آج بھی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ مضبوط دے مسلمانوں کو، ہمارے حاکم جتنا کہ 55 کنٹری کے حاکم ہیں، مسلمان کنٹری کتنی ہے بھائی؟ 55، لیکن اس حاکم کا بالکل ایسا جیسا ربر ہے، کچھ نہیں۔ کیوں؟ اصل یہ چیز اللہ کہہ رہے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، اچھے اچھے اعمال کریں، تو اللہ نے وعدہ کیا ان کو زمین میں خلیفہ بنائیں گے، جیسے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، مضبوط بنائیں گے۔ वले युमक्किनन्ना, ये तो बूढ़े हो चुके हैं कुछ काम के नहीं है, वले युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तदा लहुम, और अल्लाह ताला उनके लिए दीन इस्लाम को पसंद करेंगे, है ही नहीं दीन इस्लाम इनके पास, नाम क्या है, और वले युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम, अल्लाह उनको खौफ के बाद अमन देगा। अल्लाह के नबी ने सहाबा ने कहा 20 मरतबा सलातुल खौफ पड़ी गई, कितनी बार में 20 मरतबा सलातुल खौफ पड़ी, यानी अल्लाह के नबी और सहाबा के बदन पर हर वक्त हथियार रहते थे, उतारते नहीं थे कब क्या हो जाए। तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के कब चैन से सोएंगे, कभी भी मसला उस कब चैन से सोएंगे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ए अदी इब्ने हातिम से कहा था भी हातिम से, ये हीरा तुमने जगह देखी हीरा, वहां से लेकर एक औरत अपने बदन पर सोना पहन कर आएगी कहां तक, मक्का मुकर्रमा हज तक, हज पढ़ने के लिए रास्ते में कोई दुश्मन उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, ऐसा अमन अल्लाह पैदा करेगा। अदीब नबी हातिम कहते हैं मैंने वो टाइम भी देखा कि अल्लाह पाक ने खौफ को खत्म कर दिया, रास्तों के दुश्मनों को खत्म किया, लोग अमन की जिंदगी गुजारते थे, या बुदू ननी, लेकिन शर्त यह है मेरी इबादत करना, अल्लाह कह रहे हैं मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करना, जो इसके बाद ना शुक्री करेगा यही लोग फासिक है, नमाज को पढ़ना, जकात को अदा करना और रसूल की इताअत करोगे तो अल्लाह तुम पर रहमत की बारिश बरसाएगा। ला तहसबन्नल्लज़ीना, ऐ मेरे सहाबा, ओ ऐ मेरे नबी, तुम कभी ये गुमान न करता कि ये इतने फासिक शहीद कर रहे थे, तो उस्मान को, हजरत अली को, फलां को, फलां को, फलां को, ये समझते हैं कि ये लोग अल्लाह को जमीन में ठका देंगे, वाहुमुन्नार, वो नहीं ठका सकते हैं, उनका ठिकाना जहन्नम है, वल बिसल मसीर, और ये बहुत बुरा ठिकाना है। अब आइंदा कल अब दोबारा अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, पहले तो घर के बाहर वालों को कहा था कि आवे तो सलाम करके आओ, रिंग मारो, रिंग बेल बजाओ और सलाम करो, फिर अंदर में आओ इजाजत लेकर। अब घर के अंदर वालों को क्या हुक्म है, माँ बाप सोए हो तो, घर के अंदर में बच्चों को क्या हुक्म, जो बालिग है या जो नाबालिग, उनका हुक्म अगली आयत में बयान कर रहे हैं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए, या अरहम राहिमीन, या ज़ल जलाली वल इकराम, या हन्नान या मन्नान, يا ديان ويا سلطان يا قديم الإحسان، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله تهجد کا ٹائم، اللہ تعالی افطاری کا ٹائم ہے، تہجد سے لے کر ابھی افطاری تک ہم تجھ سے بار بار دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، عفو عافیت کا معاملہ فرما، اندر کے باہر کے دشمنوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اندر کے باہر کے دشمنوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہزاروں لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کی سارے دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے شہر کو پر امن بنا، یا اللہ پر امن بنا، اللہ پورے کنٹری کو پر امن بنا، یا اللہ مسلمانوں کی مدرسوں کی، مکتبوں کی، مساجد کی، اے اللہ جان مال آبرو عزت اور مساجد سب کی حفاظت فرما، نماز پڑھنے والوں کی حفاظت فرما، قرآن پڑھنے والوں کی حفاظت فرما، علماء صلحہ کی حفاظت فرما، اے اللہ سکون نصیب فرما، سکون نصیب فرما، بے چینی سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں کی اے اللہ آنکھوں سے، دشمنوں کی بدترین پلاننگ سے اللہ مسلمانوں کی، پوری دنیا کی مسلمانوں کی حفاظت فرما، پاکستان اور ہند اور افغانستان کے درمیان میں جو جھگڑا ہے اللہ اسے ختم فرما، آپس میں محبت مودت نصیب فرما، اے اللہ غزہ کے، فلسطین کے، ویسٹ بینک کے اور سودان کے، اے اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری ظاہری باطنی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما، ظاہری باطنی گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو تقویٰ نصیب فرما، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب کر دینا، یا اللہ ہماری ہر عبادت کو، ہر تلاوت کو، ہر نماز رکوع سجدہ کو تو قبول فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم.